نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر ایسے چھوڑ نہیں دیا. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے ایک ایک مرحلے کے اوپر ہماری رہنمائی بھی فرمائی. سال کے 12 مہینے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں آیت 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں برس کے یعنی سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو شریعت اسلامیہ میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے. لفظ محرم اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہے تو ہا را میم سے ہے، حرم یحرم تحریم ہے. تو محرم کا لفظ اپنی پرونانسیشن کے درست انداز میں اگر دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ممنوع. دیکھیے، ایک ہوتا ہے محرم، ایک ہوتا ہے محرم، ایک ہوتا ہے محرم، سارے ہی عربی میں استعمال ہوتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے اعراب کو درست نہیں کرتے. بعض دفعہ میں دیکھا ہے لوگ محرم لفظ، یعنی جو شخص احرام کی حالت میں ہو اس کو محرم کہتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں. تو یہاں لفظ کے محرم، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ مفعول کا وزن ہے ممنوع کے معنوں میں، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام. ٹھیک ہے، تو محرم الحرام وہ مہینہ جو مقدس ہے، جس میں کچھ چیزیں ممنوع ہیں، جو حرام کیا گیا، جو عظمت والا ہے، جو لائق احترام ہے. تو شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حرمت والے مہینے، منہا اربعۃن حرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذی القعدہ، یا جس کو آپ ذو القعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ذو الحج یا ذی الحج، اور محرم اور رجب. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ 3 مستقل مہینے ہیں، رجب الگ ہے. تو گویا کہ محرم کی ایک اور شان نوٹ کر لیجئے گا کہ مستقل اس کے پیچھے 2 حرمت والے مہینے ہیں، یہ 3rd مہینہ ہے. تو پھر تو واقعی اس کی حرمت کی عادت ہو چکی ہوگی انسان کو اگر وہ پہلے 2 مہینوں میں احترام کر چکا ہو. تو حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد کیا کہ اس مہینے میں احترام کیا جائے. اسلام سے قبل بھی اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور 4th میں عمرہ کرتے تھے. اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی. یاد رکھیے کہ یہ ساری ترتیب جو ہے نا، یہ شروع سے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جن سالوں میں ہوئی اس وقت عرب کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ہر طرف چور چکاری اور اس طرح کی راہ زنی تھی کہ لوگ اپنے مال کو اور جان کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے. تو یہ جو 3 مہینے ہیں مستقل، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ان مہینوں میں عموماً حاجی اپنے گھروں سے نکلتے تھے، حج کے لیے سفر کرتے تھے اور واپس جاتے تھے. تو لہٰذا حاجیوں کے احترام میں یہ لوگ چوری چکاری نہیں کرتے تھے، راستوں میں قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے. اور رجب کا جو مہینہ، اس میں عموماً عرب لوگ عمرہ کرتے تھے. بس یہ 4 مہینے تھے جس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا گھر سے نکلے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو محرم الحرام پہلا مہینہ بھی ہوا، ہجری کیلنڈر کا سال ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں کچھ خاص واقعات بھی ہوئے، تو ذرا سے اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے کلچر میں عموماً یہ باتیں معروف نہیں ہیں. تو محرم الحرام کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے. پہلی بات نوٹ کر لیجئے، فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو غلامی سے نجات ملی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2658 نمبر کی. دلیل کے بغیر آپ اور میں کچھ کہہ نہیں سکتے. और इस पे पूरी हदीस अगर आप पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह के नबी ने मदीना में आने के बाद जब यहूद को रोज़ा रखते हुए देखा तो पूछा क्यों, तो उन्होंने गवाही दी कि इस दिन फिरौन डूबा और बनी इसराइल निजात पाती है, लिहाजा हम इस खुशी में रोज़ा रखते हैं। नोट कीजिए कि अल्लाह के नबी के दौर के बनी इसराइली भी फतह का जश्न मेलों ठेलों और घन गरज से नहीं बल्कि रोज़ा रख के मनाते थे। अल्लाह ताला हमें फतुहात या कह लीजिए कि आज़ादियों के जश्न आजजी और शुक्रगुजारी के साथ मनाने वाला बना दें। दूसरा अहम वाक़या जो इस महीने से मनसूब किया जाता है वो आमुल फील का वाक़या है। इसी महीने में पेश आया जिसमें अब्रहा हाथियों के लश्करों के साथ खाना काबा को तबाह करने के लिए आया था। ये चीज़ आप इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया से पढ़ सकते हैं। इसके पीछे भी कुछ सियासी वजूहात थी और इसी तरह से कुछ इसमें इस तरह की बातें थी कि जो हकीकत में नहीं होनी चाहिए लेकिन तासुब और हसद की वजह से ये हुआ था। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि मैं अपने घर की हिफाजत छोटे छोटे परिंदों से भी करवा सकता हूँ। फिर इसी तरह तीसरा वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिलाना हमला और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए यकम मुहर्रम सन 23 यानी 23 हिजरी को शहीद होना था। याद रखिए कि हज़रत उमर ने अल्लाह के नबी सल्लम के बाद 10 साल हुकूमत की। उससे पहले 2 साल अबू बकर सिद्दीक के थे और 10 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो मदीना के थे। तो गोया कि सिर्फ 23 साल गुजरे थे अभी तक हिजरत किए हुए मुसलमानों को। और हज़रत उमर के कत्ल का वाक़या भी पढ़ने के काबिल है। कभी अगर आपको फ़ुर्सत मिले तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ने इनको पूरी दुनिया के लिए इस तरह एक रोल मॉडल बना दिया कि ये वो शख्स थे कि जिनके हाथों दुनिया में इतना कुछ अल्लाह ताला ने करवाया और मुसलमानों ने कसीर रकबे पे हुकूमत भी की और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद बिल आखिर एक शख्स फिरोज लूलू के हाथों कत्ल हुए। हज़रत उमर फारूक ने अपनी बीमारी के दिनों में जब उनके ऊपर ये तकलीफ़ आई थी तो पूछा कि मुझे किसने कत्ल करने की कोशिश की, तो जब लोगों ने नाम लिया फिरोज़ का, ये मजूसी था, फायर वर्शिपर था, तो हज़रत उमर ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरा खून किसी मुसलमान से नहीं करवाया। यानी आप देखिए कि ऐसे हालात में जब जान पे पड़ी होती है उस वक्त भी इन लोगों को अपनी नहीं इस्लाम की और कुफर की और ये सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता था। और हकीकत है कि आसमान ने ऐसा शख्स भी देखा कि जिसने 22 लाख मुरब्बा मील में हुकूमत की लेकिन उनकी कमीज़ में 17 यानी 17 पैबंद लगे हुए थे। तो यौमे शहादत हज़रत उमर फारूक का यकम मुहर्रम है। हमें इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें और हमारे हुक्मरानों को ऐसी ऐसी शख्सियात को रोल मॉडल बनाने की तौफीक दे कि जो हकीकत में पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन थे। आपको यहाँ एक छोटा सा काम दूंगी अगर आप कर सकें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी और ख़ास तौर पर उनका खिलाफत का दौर है, इस पर ज़रूर कुछ पढ़िए। आप देखेंगे कि इन चीज़ों को पढ़ने के बाद वाकई दिल में एक नरमी भी आती है, गुदास भी आता है और दिल चाहता है कि हम अपनी तबीयतों में भी तब्दीली पैदा करें और हमें हकीकत में इस चीज़ का यकीन आ जाए कि वाकई हमारा रब हमसे कितना प्यार करता है और हमने इसको ज़ाया नहीं करना। और न जाने क्यों हज़रत उमर के नाम पर दिल नहीं चाह रहा कि इस बात को छोड़ूं, क्योंकि ये वो शख्सियात है, अगर आज हमें इनके बारे में पता चल गया, हमारी नस्लों को पता चल गया, तो फिर इंशाल्लाह कल यही लोग हमारे लिए रोल मॉडल होंगे। यहाँ सिर्फ दिलचस्पी के लिए नहीं, एक और ख़ास मकसद की वजह से ये बात भी नोट कीजिएगा कि हज़रत उमर जब उन पर हमला हुआ तो आप मस्जिद नबी में नमाज फजर की इमामत करवा रहे थे। और 27 जिलहज का ये वाक़या बुध का दिन था, इमामत करवा रहे थे और नमाज के दौरान अबू लूलू फिरोज नामी मजूसी गुलाम ने जहर आलूद खंजर से आपके जिस्म मुबारक पर 3-4 बार किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जख्मी होकर गिर पड़े। हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ ने नमाज पढ़ाई। बदबख्त कातिल ने मस्जिद से भागते हुए तकरीबन 13 मुसलमानों पर वार किया जिनमें से 7 शहीद हो गए। आपको बेहोशी की हालत में घर लाया गया। होश आने पर जब इन्होंने पूछा तो बताया गया कि आप पे हमला करने वाला शख्स मजूसी था, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमलावर मुस्लिम ना था। यहाँ एक छोटा सा जुमला उमर का नोट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत। उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उस शख्स के हाथों शहीद करवाया जिसने कभी ज़मीन पर एक सजदा भी नहीं किया था। अगर उसने एक सजदा किया होता तो मैं उम्मीद करता कि अल्लाह उसको भी माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, बाद में सोचिएगा। आप पर खशियत इलाही की कैफियत तारी हो गई। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि मेरा सर अपनी गोद से हटाकर ज़मीन पर रख दो ताकि अल्लाह ताला मुझसे रहमो करम वाला मामला फरमाए। इस मौके पे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो आपको बशारतें और तसल्लियाँ देते रहे। 3 दिन कर्ब में गुजारने के बाद आप ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए यकम मुहर्रम अल हराम सन 24 हिजरी को जाम शहादत नोश फा गए रदी अल्लाह अन्हो व रदुअन। अल्लाह ने ज़िंदगी भी खूबसूरत दी और अल्लाह ने मौत भी खूबसूरत दी। तो ऐसे मौक़ों पे कभी कभी ऐसे शुहदा का भी तذکرہ कर लेना चाहिए। कदरे डिटेल से ये वाक़या बताने का एक ये भी मकसद था कि जब करबला के नाम पर या कुछ और वाक़यात को बयान करते वक्त मुहर्रम की महफिलों में बाकी शुहदा का तذکرہ किया जाता है जो किसी और जंग में थे, तो फिर उस वक़्त हमें और हमारे बच्चों को हज़रत उमर की शहादत और आगे जाके कभी हज़रत उस्मान की शहादत का भी तذکرہ करना चाहिए ताकि वो सबसे एक जैसी मोहब्बत महसूस करें। फिर इसी तरह से अगला वाक़या जो इस महीने में हुआ, हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हो अपने ख़ानदान के बहुत से अफराद के हमराह 10 मुहर्रम अल हराम सन 61 हिजरी को मैदान करबला में शहीद हुए। ये है जिसकी वजह से इसको वाक़े करबला कहते हैं। आप देखिए कि 61 में ये वाक़या हुआ। हज़रत उमर 23 हिजरी में पाते हैं वफ़ात। नबी सल्लम के बहुत सारे साल गुजरने के बाद जो वाक़या आया, आज बहुत सारे लोग लफ्ज़ मुहर्रम के साथ इसी को जोड़ देते हैं। हालांकि आपको पता है कि सन 17 हिजरी में हज़रत अबू मूसा अल अशरी के तवज्जो दिलाने पर हज़रत उमर ने सहाबा कराम से मशवरा किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के मशवरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े हिजरत को इस्लामी सन की इब्तिदा करार दिया। और चूंकि मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का आगाज़ माहे ज़ुलहज के आखिर में हुआ था, तो इसके बाद जो चांद निकला वो मुहर्रम का था। तो लिहाजा हज़रत उस्मान के मशवरे से मुहर्रम को इस्लामी साल का पहला महीना करार दिया गया। ये फतहुल बारी की रिवायत है जो सही बुखारी की बड़ी ही मारूफ शरह है। तो क्या पता चला कि ये महीना अपनी जगह अहम है। अब सवाल पैदा होता है कि जब भी किसी नए महीने का आगाज़ होता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाकी महीनों की तरह मुहर्रम के चांद को देखने का भी इख्तमाम करें और उसको देखें, अगर अल्लाह दिखा दे तो वो दुआ जिसको दुआ रुअत हिलाल कहते हैं, चांद देखने की दुआ, वो ज़रूर पढ़ें। अब आप कहेंगे अगर शुरू हो गया तो कोई बात नहीं, अगले महीने का चांद जब आएगा सफ़र का तो उसके साथ भी यही इख्तमाम कीजिए और उस दुआ को दोहरा लेते हैं। मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ दोहराइएगा। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्नी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम वत्तौफीकी लिमा तुहिब्बु वतरदा रब्बी वरब्बुकल्लाह। इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह हमको आप अमनो अमान और सलाम का चांद दिखाइए। फिर इंसान चांद को मुखातिब करके कहता है कि चांद मेरा रब और तेरा रब अल्लाह ही है। यानी जो एक मुशरिकाना सोच थी, कुछ लोग चांद सूरज के भी सजदे करने वाले थे, उनको सजदा करते थे, तो उनको बताया जा रहा है कि इनको सजदा नहीं करो, इनके रब को सजदा करो। तो ये रिवायत जो हमने पढ़ी है ये सुनन तिरमिज़ी की है 3451 और 1812 की, सही तिरमिज़ी की ये रिवायत है। तो चांद देखने की इस दुआ को भी याद करना और बच्चों से शेयर करना इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। अब आगे आखिर में एक सवाल पैदा होता है कि मुहर्रम का पैगाम क्या है, मुहर्रम हमसे क्या चाहता है? तो याद रखिए कि इस मुकद्दस महीने की जो दूसरी अहमियत कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, नए साल की इब्तिदा करते हुए इस महीने के आगाज़ में खुशी और मुबारक सलामत के जज्बात का इजहार एक फितरी अमर है। 29 महीने का ये हक है कि इसे नई उमंगों, भरपूर उम्मीदों, ताज़ा वलवलों और पुरखलूस दुआओं के साथ शुरू किया जाए। आप देखिए, साल तो आते हैं अल्लाह के हुक्म से और गुजर जाते हैं, मगर इस वक्त को इंसान ने किस तरह और किन हालात में गुजारा वो बाकी रह जाएगा। चुनाचे आने वाला मुहर्रम, या जो गुजर रहा है या आ रहा है, आ चुका, ये हमें पैगाम देता है कि हम अपनी ज़िंदगी को मुफीद बनाएं। ये है असल में नोट करने की बातें, बामकसद बनाएं, सही कामों में इस वक्त को इस्तेमाल करें और अच्छे अमाल के ज़रिए इन घड़ियों को अपने हक़ में हुज्जत बनाएं, ताकि कल आने वाले वक्त में कामयाबी नसीब हो और इंसान मायूसी और महरूमी से बच जाए। ज़िंदगी गुजारने का नया ढंग सीखना है। चूँकि मुहर्रम नए साल का आगाज़ भी है, जिसको लोग न्यू ईयर कहते हैं, साल नौ कहते हैं, और इससे नया साल शुरू हो रहा है, तो क्या किया जाए? पहली बात है, एक नए अज़्म और जज्बे से साल का आगाज़ किया जाए। इसके लिए ज़हनी और अमली तैयारी भी की जाए। कैसे? मसलन, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना है। लिखिए, इस साल में मेरा हदफ, मेरा गोल क्या है कि मैंने हर दिन अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने की कोशिश करनी है। फिर दूसरी बात है कि इबादात को शौक़ और रग़बत से अदा करने की कोशिश करना। इबादात तो हम कर ही लेते हैं, अदायगी तो हो ही जाती है, लेकिन कहाँ है शौक़ और कहाँ है रग़बत? कहाँ है वो मोहब्बत के सजदे और कहाँ है वो प्यार और इखलास के सजदे और शुक्र के सजदे? तो लिहाजा इंशाल्लाह अपनी इबादात में शौक़ का रंग डालना है। तीसरा हदफ, वालदैन की खिदमत और रिश्तेदारों के हकूक़ की अदायगी में बेहतरी लाना। इसको आप कह लीजिए कि रिलेशन मैनेजमेंट सीखनी है। आज ये चीज़ बहुत कमज़ोर होती जा रही है। चंद दिन पहले डेनमार्क ट्रिप के दौरान यंग बच्चियों के साथ एक छोटा सा सेशन था, वो किया, जिसका नाम ही रिलेशन मैनेजमेंट था। बहुत सारे आज के वो मसाइल जिसका हमारी यंग नस्ल शिकार है, मसलन लोगों की मौजूदगी में भी सेलफोन से खेलते रहना, माँ बाप के साथ कहीं जाने को तैयार नहीं, शादी में दिल नहीं लग रहा क्यों घर पे ठीक है, और अपने ही खिसार में बंद होना, ये उसका मेन टॉपिक था। मौका मिला तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि उससे हम सबको अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ निभाने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। फिर अगली बात जो आपकी मेरी ख़ास तौर पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपने घर वालों यानी अहले खाना और बच्चों की तरबियत की तवज्जो देना। आप देखिए कि कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत होता गया ना, अब अपने बच्चों और घर वालों को हमने एक नए ढंग से देखना है, और इसके लिए बहुत सारी हिकमतें कुरान ने दी हैं, और इंशाल्लाह हम अपने अगले कोर्सेज़ में ख़ास तौर पे इस तरह की टिप्स सीखेंगे कि कैसे घर और कुरान को साथ साथ लेकर चलें। फिर एक और नियत करते हैं इस साल के लिए कि मैंने लोगों के लिए नफ़ामंद बनना है और ज़ाती इस्लाह की प्लानिंग करनी है। सेल्फ स्ट्रीम सही करनी है, या आप करेक्टर बिल्डिंग कह लीजिए, यानी अपने आप को हर दिन बेहतर करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं, वो तबाह हो गया। तो आप कह लीजिए कि हमारा अगला गोल क्या होना चाहिए? करेक्टर बिल्डिंग का। अपनी खामियों को ढूंढें बस और बदल दें, ख़त्म कर दें। देखिए, चावलों में कितने ऐसे होते हैं ना, कंकर वगैरह, तो क्या है, बस निखोलते जाएं, चेक करें और निकाल दें। जूं ही मैंने और आपने अपने अंदर एक गहरी नज़र डाली, हमें खुद ही दिख जाएंगी चीज़ें, बस उठा के फेंकनी होती है। फिर कंकरों की कोई ज़्यादा केयर नहीं करता। तो हमने इंशाल्लाह अपनी ख़राब आदतों को दूर करना है और माशरे के पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश करें। यानी आज इस माशरे में जो कुछ है, वो हम सबको देखना है कि हम इसमें अपना हिस्सा कहाँ लाते हैं। ये तो थी चंद चीज़ें हदफ की। अब हम एक सवाल करते हैं खुद से, क्योंकि इससे पीछे वाले महीने में तो माशाल्लाह बहुत सारे रोज़े थे कि अशरा ज़ुल्हज्जा में इवन आप पहले 9 दिन भी रोज़े रख लें तो बहुत ही अजर की बात थी। तो क्या मुहर्रम के महीने में भी कोई रोज़ा है? तो बिल्कुल है, इसको आशूरे का रोज़ा कहते हैं। आशूरा अशरा से आमतौर पे 10 को रखा जाता है, लेकिन क्या है, नोट कीजिएगा, मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। ये दिन अल्लाह ताला की खसूसी रहमत और बरकत का हामिल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, अय्याम जाहिलियत में कुरैश आशूरे के दिन रोज़ा रखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। फिर हिजरत मदीना के बाद भी आपने ये रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी रखने का हुक्म दिया। अलबत्त जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, तो आपने फरमाया जो चाहे अब इसका रोज़ा रखे और जो चाहे तो छोड़ दे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, 2637। तो क्या पता चला کے چوائس ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ابو قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2746. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورے کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ، انداز دیکھیے ابو قتادہ کا، بات کو اللہ کے نبی کی طرف کس طرح منسوب کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ فرض ہے، سنت ہے، اللہ نے کہا میں سمجھتا ہوں، تو یہ اللہ کے نبی کہیں تو یہ بھی دین ہے. پھر اسی طرح ابو قتادہ ہی سے ایک اور روایت ہے، سئل عن صومی یومی عاشورا فقال یکفر سنت المادیہ. صحیح مسلم 2747. عاشورے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو کیا پتہ چلا، ذرا سوچتے ہیں، چند سیکنڈ دوں، کوئی گناہ یاد کیجئے جو پچھلے سال میں سرزد ہوا. میں کہوں گی کوئی ایک، آپ یہ کہیں کون سا چھوڑیں اور کون سا رکھیں. تو کیا اگر 1 دن کے روزے سے پورے سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو کوئی نقصان کا سودا ہے؟ اور عبادت میں تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کی کوشش کرنی ہے. پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھتے تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر، یعنی انہوں نے اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی کا حکم دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2658 نمبر کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی حقیقت میں ایک خوبصورت دن ہے. اور یہاں دیکھیے، ایک ہی دن ہے، کسی قوم کی نجات ہے تو کسی قوم کی تباہی ہے. اصل میں یہی قیامت کے دن ہوگا. قیامت کا دن کچھ لوگوں کے لیے تو خوشیوں کا دن ہے، کچھ کے لیے غم کا. جیسے رزلٹ کا ڈے ایک ہی ہوتا ہے، لیکن فرسٹ آنے والوں کے لیے مبارکیاں اور خوشخبری ہیں اور فیل ہونے والوں کے لیے حسرتیں ہیں. یہاں چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، میرا ڈے آف ججمنٹ کیسا گزرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ابھی سے اس کی فکر لگا دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزہ جو یہود رکھتے تھے تو کیا ہم رکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا. اس کے لیے آپ نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. صحیح مسلم کی روایت 2666. لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ کی وفات ہو گئی. چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے. کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 11 محرم کا ساتھ ملا سکتے ہیں، ویسے کوشش 9 کی کریں. ٹھیک ہے، کیا پتہ چلا، ذرا سا نوٹ کیجئے. جو اصل نقطہ ہے کیا، کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنا سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں ہو، عادات و اتوار میں ہو یا رسم و رواج میں ہو. آج ہمارا حال کیا ہوگا یہ ہم سب خوب دیکھیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تشبیہ سے بچا لے. تو یہ تھی چند باتیں جو محرم سے متعلق تھیں. اب ایک چھوٹی سی بات کہ محرم اور کربلا کا کیا تعلق ہے، تو نوٹ کیجئے گا کہ واقعہ کربلا وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال بعد محرم 61 یعنی 61 ہجری میں پیش آیا، جبکہ سنت نبوی مکمل ہو چکی تھی. لہٰذا آج اگر واقعہ کربلا کے حوالے سے کوئی اعمال اور افعال ثواب اور نیکی سمجھ کر انجام دیے جاتے ہیں تو وہ کسی بھی درجے میں سنت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ سنت تو پوری ہو چکی تھی. تو جب سنت نہیں تو قبولیت کہاں ہوگی بارگاہ الہی میں؟ تو اضافہ ہی ہوا یا بدعت ہوئی. تو ہمیشہ یاد رکھیے، کام وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا. آپ اور میں آج کیا کریں، محرم کی حرمت کا خیال رکھیں، کیونکہ کچھ فسادات اور ऐसे झगड़े हर साल सुनने में आते हैं। तो याद रखिए कि दीन इस्लाम अमन और पीस वाला दीन है, तो मुहर्रम अल हराम की हुरमत का ख्याल रखना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहाँ हुरमत के महीनों का जिक्र किया वहाँ साथ ही फरमाया फ़ला तुस्लिमू फ़ी हिन अनफुसकुम, सूरह तौबा 36 है, बस इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो, यानी कोई ऐसा काम ना करो जो अल्लाह ताला की नाराज़गी और इसकी नाफरमानी का हो। गुनाह बिदात और मुनकरात से भी काम नहीं करने चाहिए। इसी तरह मुहर्रम हुरमत वाले महीनों में से एक है, तो लिहाजा चाहिए कि हर उस काम से बचें जो किसी भी तरह इसकी हुरमत को पामाल करे। मसलन हर किस्म के झगड़े से बचना, फितना व फसाद से अपने आप को दूर रखना, अपने भाइयों की जान माल और इज्जत की हुरमत का ख्याल रखना। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का जो खुतबा था उस मौके पे फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, इस शहर की और इस महीने की हुरमत है। ये बुखारी की रिवायत है 1739 नंबर की। तो क्या आपका ये पैगाम फिर हमारे लिए काफ़ी नहीं है? ज़ुबान और अमल दोनों से हर उस काम से बचिए जो दूसरे की अजियत और तकलीफ़ का बायस बने या जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। इसी तरह से आप देखिए सहाबाए कराम जैसी बेमिसाल शख्सियात के लिए कोई ना ज़ेबा कलेमात अदा ना करें जिनसे उनकी बेअदबी और तौहीन हो। हम नबी के पाँव की जूती तो क्या हम आपके सहाबा के पाँव की जूती के भी बराबर नहीं है? जो कुर्बानियाँ, हिजरतें और मुश्किलात उन्होंने इस दीन के लिए सही, आपने मैंने तो उसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तो हमारी शान नहीं, जैसे कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। फिर इसी तरह कोई रंजिश और नाचाकी भी हो तो ख़त्म कर दें और सुलह और अमन का पैगाम कौल अमल के ज़रिए आम करें। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि हुरमत वाला महीना है तो इस पूरे महीने में अपने ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाइए। मसलन मैंने गीबत करके दूसरी बहनों की इज़्ज़त पामाल नहीं करनी, मैंने गीबत करके ताना दे के इल्ज़ाम लगा कर अगले की इज़्ज़त को पामाल नहीं करना। फिर इसी तरह से ये भी चीज़ सामने रखी है कि मैंने रूठे मुँह को मनाना है। जब इस महीने की इतनी फजीलत है तो फिर मैं अपने लोगों को क्यों नाराज़ करूं? अगर महीना हुरमत वाला है तो मेरे पेट में हराम का एक लुकमा नहीं जाएगा, ना मैंने हराम देखना, ना सुनना, ना बोलना। चंद दिन की एक माह की पाबंदी लगाएंगे, अल्लाह से बहुत उम्मीद की जाती है कि फिर इसके बाद इसकी आदत हो जाएगी। जजाक अल्लाह खैर वासन जजा, अल्लाह ताला आपको मुझे हर दिन से बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाला बनाए और हमारी ज़िंदगी इस दीन की खिदमत में गुजर जाए और हम लोगों के बीच में इस तरह से हों कि जैसे फूल खुशबू फैलाता है, और अल्लाह ताला हमें ज़ाया होने से बचा ले। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।